ओम शांति। देश का हृदय स्थल नागपुर, वहां से चलकर आप सभी कहां आकर पहुंचे हैं? हाँ, अध्यात्म का हृदय स्थल पांडव भवन। ब्रह्मा कुमारी की हृदय स्थली है ना पांडव भवन। चाहे विश्व भर में कितने ही ब्रह्मा कुमारी के स्थान है, इवन माउंट आबू में भी अलग अलग स्थान है, लेकिन सब का हृदय स्थल कौन सा है? पांडव भवन। और आप सभी ब्राह्मणों को ऐसे स्थान पर आने का सौभाग्य मिला है। तो इस बाबा के घर में, अध्यात्म की हृदय स्थली में, जो बाबा की अवतरण भूमि, कर्म भूमि, चरित्र भूमि, वरदान भूमि है, ऐसी भूमि में आप सभी ब्राह्मण कुलभूषणों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे बाप के घर के श्रृंगार होते हैं। बच्चों के आने से बाप के घर में रौनक लग जाती है, घर में रिमझिम सी हो जाती है। तो आपके आते ही बाबा की इस आंगन में रिमझिम सी लग जाती है। तो बहुत भाग्यशाली हो जो बाप के घर में आप पहुंचे हो। किस लिए? तपस्या करने के लिए, योग तपस्या करने। योग तपस्या भी क्यों करनी है? क्योंकि हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। क्यों संपन्न बनना है, क्यों संपूर्ण बनना है? क्योंकि हमारे बाबा भी संपन्न और संपूर्ण बने, तो हमें भी बाप समान बनना है। तो ऐसे सुंदर लक्ष्य को लेकर आप सभी 3-4 दिनों के लिए अपनी लौकिक जिम्मेवारियों को या सेंटर के कारोबार को किसी को सौंप कर, किसी को क्या, बाबा को ही सौंप कर बाबा के ही घर में आए हैं, है ना? तो इन 3-4 दिनों का जब बाबा ने आपकी जिम्मेवारी लेने की जिम्मेवारी ले ली है, तो अब हमारा क्या काम है? इन 3-4 दिनों का सदुपयोग करें। जिस लक्ष्य से हमने बाबा को जिम्मेवारी दी है कि आप संभालो हमारी गृहस्थी, आप संभालो हमारी प्रवृत्ति, हमें तो आपके जैसा बनना है, और उसके लिए योग तपस्या का समय चाहिए। तो जब बाबा ने जिम्मेवारी उठाई है, तो हम ये 3-4 दिन का समय बहुत अच्छी से उसका सदुपयोग करना होगा, तब जाकर हमारा भट्टी में आना सार्थक होगा। और इसके लिए भट्टी की एक दिनचर्या बनाई गई है, ताकि उस दिनचर्या के अनुसार आप चलेंगे तो भट्टी का पूरा पूरा लाभ ले सकेंगे। तो क्या है दिनचर्या? जैसे आज का पहला दिन है भट्टी का, जिसको हम कहेंगे स्वागत सत्र है, उद्घाटन का दिवस है। तो जैसे हम सभी यहाँ बैठे हैं, सबको तिलक लगा है, चंदन का तिलक याद दिलाता है कि जैसे चंदन शीतल है, चंदन खुशबूदार है, चंदन ओजस्वी तेजस्वी है, ऐसे ही हम आत्माएं भी खुशबूदार, ओजस्वी, तेजस्वी और शीतल है। तो आज के स्वागत सत्र में जैसे हम आप सबके बीच में आए हैं, आपको भट्टी की दिनचर्या सुनाएंगे अभी, और कुछ विशेष डायरेक्शंस भी, और उसके बाद हमारे बीच में आएंगे गोपी बहन जी, जो हम सभी को भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य सुनाएंगे। तो 6:30 बजे हमारे बीच में होंगे गोपी दीदी जी, 6:30 से 7:30 वे हमें लक्ष्य से उद्देश्य से अवगत कराएंगे, और फिर 7:30 बजे हमारे बीच में आएंगे मधुर वाणी ग्रुप, जो अपने स्वागत की प्रस्तुति, गीत की प्रस्तुति के साथ आप सभी का भव्य स्वागत करेंगे। और उसके बाद आएंगे हमारे बीच में शशि दीदी जी, जो अपनी शुभ कामनाएं और प्रेरणाएं हम सबके सम्मुख रखेंगे और बाबा के घर से सभी का मुख भी मीठा कराएंगे, और इसी के साथ आज का ये स्वागत सत्र पूरा हो जाएगा। तो क्या है भट्टी की दिनचर्या, वो मैं पहले सुना देती हूँ आपको कि आज का दिन तो ऐसे हो जाएगा, पूरा क्लियर किया। आने वाले 3 दिन कैसे होंगे, आज 27 है, सोमवार का दिन, तो ये पहले दिन का मैंने सुना दिया, और उसके बाद 28, 29, 30 यानी मंगल, बुध और गुरु, ये 3 दिन की दिनचर्या मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो जैसे कहते हैं ब्राह्मणों की दिनचर्या कहाँ से शुरुआत होती है, अमृत वेले के साथ। तो अमृत वेला जैसे हम सभी जानते हैं, आप सभी चूंकि यहाँ पर आए ही हैं हर प्रकार की जिम्मेवारी से मुक्त होकर, यहाँ पर आपको कोई जिम्मेवारी नहीं है सिवाय 2 जिम्मेवारियों के। 2 कौन सी जिम्मेवारी है आपके ऊपर, एक भजन की, एक भोजन की, है ना? तो भोजन माना इस पेट को और भजन माना इस आत्मा को खिलाएंगे, बस यही 2 जिम्मेवारी है और कोई जिम्मेवारी नहीं है। और इसके लिए आप अपना योग तपस्या का चार जितना बड़ा करना चाहे कर सकते हैं। तो सवेरे चाहे जितना जल्दी उठो वो आपके ऊपर है, लेकिन हरेक को अपनी अपनी शारीरिक क्षमता को भी देखना होगा, अपने स्वास्थ्य को भी देखना होगा। ठंडी की सीजन भी चल रही है, शीत लहर चल रही है, उन सब को देखते हुए आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार सुबह जितना जल्दी उठ सके उठेंगे, लेकिन ऑफिशियली यहाँ पर संगठित योग के लिए सभी ने 4 बजे पहुंचना है। 4 से 4:45 हम सब मिलकर यहाँ पर संगठित योग करेंगे। वैसे तो इस हॉल में 3:30 बजे से ही मेडिटेशन चालू हो जाता है, तो 4 से 5 मिनट पहले आकर अपना स्थान भी ग्रहण कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, यहाँ आने से पहले आप चाहे तो 4 धाम करो और चाहे तो यहाँ से जाने के बाद करो, ये आपके ऊपर है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ आने से पहले 4 धाम करने जाते हैं, और विशेषकर जो बाबा का कमरा है और कुटिया है, वहां पर 5 या 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठना है, क्योंकि बहुत छोटे स्थान है। और अभी आप देखो कितने भाई बहने हैं, पूरा हॉल भर गया आपसे, और सुबह अमृत वेले में तो न सिर्फ आप होंगे लेकिन मधुबन निवासी भी होंगे, सेवाधारी भाई बहन भी होंगे, और स्थान कितना छोटा है, इसलिए 5 या 10 मिनट से ज्यादा वहां नहीं बैठेंगे। और साथ साथ अगर आपको ऐसा दिखाई पड़े कि ये सीन तो सिर्फ उठना बैठना हो रहा है, एक उठा और दूसरा बैठा, उसमें योग का वातावरण क्या बनेगा, इसलिए ऐसे समय पर जाने की फिर आवश्यकता नहीं है, फिर बाद में भी जा सकते हैं यहाँ से, है ना? बाकी टावर ऑफ पीस, हिस्ट्री हॉल, वो तो बड़े बड़े हैं, उसमें ऐसी दिक्कत नहीं आती है। ये छोटे स्थान होने के कारण थोड़ा सा अटेंशन रखेंगे कि वातावरण दिखे कि योग चल रहा है, ऐसा नहीं बस एक उठ रहा और एक बैठ रहा है, एक उठ रहा और एक बैठ रहा है, तो जो बैठे भी होंगे ना उनका भी योग नहीं लगने वाला है, है ना। तो ये बात का ध्यान रखेंगे। तो 4 बजे से 4:45 हम सब मिलकर यहाँ पर संगठित योग करेंगे और फिर यहाँ से उठने के बाद चार धाम आदि जो भी आपको करना हो अपने कमरों में जाकर फिर फुल तैयारी के साथ तैयार होकर 6:30 बजे पहुंचेंगे कहाँ पर, ओम शांति भवन में, जहां पर 6:30 से 7 बजे तक पुनः संगठित योग चलेगा और 7 से 8 हम सभी बाबा की मुरली सुनेंगे। मुरली के बाद गीत बजेगा और उसके बाद मधुबन निवासी सेवाधारी भाई बहने सब उठ जाएंगे, लेकिन आप सबने नहीं उठना है, आप सभी बैठे रहेंगे, क्योंकि भट्टी की प्रतिदिन की दिनचर्या वहीं पर सुनाई जाएगी। मैं तो यहाँ पर एक सामान्य दिनचर्या सुना रही हूँ, लेकिन प्रतिदिन की दिनचर्या मुरली क्लास के बाद ही सुनाई जाएगी, इसलिए आपने बैठना होगा मुरली क्लास के बाद भी, और वो दिनचर्या सुनाकर जब हो जाए फिर आप भी उठ सकते हैं, और उठने के बाद नाश्ते के लिए प्रस्थान करेंगे। और जैसे आप लोग तो पहुंच गए हैं, दोपहर का भोजन ऑलरेडी किया है, कई भाई बहने कल भी आ गए थे तो आपको पहले से ही बता दिया गया है, आपका नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन, तीनों ही समय की जो खाने की व्यवस्था है आप सभी की, वो ऊपर वाले डाइनिंग हॉल में की गई है, और इसीलिए आप सबने वहीं जाना है। कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि ऊपर जाना मुश्किल है, सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती है, तो ऐसे केस में लिफ्ट यूज कर सकते हैं। जो हमारा डाइनिंग हॉल है ना नीचे का, उसके पीछे तरफ में लिफ्ट है जहां से भोजन नीचे ऊपर होता है, तो लिफ्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति बन जाती है कि लिफ्ट भी यूज करने की कंडीशन में हम अभी नहीं है, तो ऐसी ही कंडीशन में आप भोजन नीचे स्वीकार करेंगे, वरना तो ध्यान पे रहे कि हम सभी का भोजन कहाँ है, ऊपर है। और आप चूंकि बहुत सुंदर लक्ष्य लेकर आए हैं, तो बाप को तो खुशी होती है ना जब बच्चे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हैं, है ना। तो जब आप इतना सुंदर लक्ष्य लेकर बाप के घर में आते हैं योग तपस्या करने, तो बाप को भी लगता है मैं इनकी क्या नहीं खातरी करूं। तो जो खातरी वाली सिस्टम है ना, वो ऊपर होंगी नीचे नहीं होंगी, इसलिए भी आपको ऊपर ही भोजन स्वीकार करना है, वरना किसी भी कारण से अगर नीचे किया तो आपकी खातरी मिस हो जाएगी, ठीक है ना। और वैसे भी जो व्यवस्था की जाती है नीचे अलग ऊपर अलग, तो अगर उसी अनुसार चले तो जो इंतजाम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स होता है, नहीं तो ऊपर से नीचे लाया फिर नीचे से ऊपर लेके गए, थोड़ी दिक्कत होती है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। और जैसे बताया कि कई बार क्या होता है ना, नाश्ते के साथ भी कई लोगों को चाय की आवश्यकता होती है, तो वो नाश्ते वाली चाय भी ऊपर ही मिलेगी। बाकी अमृत वेले की चाय और जो शाम को चाय टोली वाली चाय और दोपहर में जो दो सेशन के बीच में हमने ब्रेक रखा है वहां पर भी चाय की व्यवस्था रखी है, तो तीनों टाइम की चाय नीचे वाले डाइनिंग हॉल में ही रहेगी। तो ये था कि मुरली क्लास सुनने के बाद आप सभी ऊपर वाले डाइनिंग हॉल में जाएंगे, नाश्ता करेंगे, और नाश्ता करने के बाद आप सभी रिलैक्स रहेंगे, फ्री रहेंगे। और जब हमने कहा रिलैक्स रहेंगे फ्री रहेंगे, माना गप्पे नहीं मारना है, लेकिन बाबा के इतने बड़े परिसर में चाहे कहीं पे भी खड़े हो जाओ और बाबा के इस आंगन की, इस परिसर की एक एक कोने से वो उठने वाली स्पिरिचुअल महक को अनुभव करो रिलैक्स होकर के। और फिर 9 से 10 बजे का समय हमने रखा है आपके लिए। चार धामों की यात्रा करने के लिए सोचो, जब शांतिवन में आते हैं बाबा से मिलन मनाने और ऊपर चार धाम की यात्रा करने आते हैं तो क्या होता है, कितनी रश होती है, कितनी लंबी क्यू होती है। और उस लंबी क्यू को पार करके अंदर चले भी गए तो तुरंत बाहर निकलना होता है, क्योंकि पार्टी के साथ आए हैं, गाड़ी इंतजार कर रही है, और भी विजिटिंग पॉइंट से वहां जाना होता है। तो चार धाम का बहुत ही कम समय में आपको लाभ मिलता है, लेकिन अभी पूरे ही तीन चार दिन हाँ आप उसी परिसर में हैं जहां पर आप दौड़ दौड़ के पहुंचते थे, उसी परिसर में आप तीन चार दिन रहेंगे, तो इन चार धामों का भरपूर लाभ उठाना। इसलिए 9 से 10 बजे का समय चार धाम की यात्रा और बाबा को पत्र लिखना है। तो जब चार धाम की यात्रा शब्द कहते हैं, इसका मतलब नहीं है कि एक घंटे में पूरे चारों जगह जाना अवश्य है, नहीं, तीन चार दिन है ना आप, तो कभी कहां पर बैठ लिए, कभी कहां पर बैठ लिए। सभी एक साथ सोचेंगे आज मुझे बाबा के कमरे में बैठना समाओगे, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि कमरे में और कुटिया में तो सिर्फ 5 और 10 मिनट से ज्यादा बैठना ही नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत अर्ली मॉर्निंग उठकर आए हैं और उस समय आप बैठे हैं और बाहर कोई क्यू नहीं है तो फिर भले बैठ सकते हैं, या दोपहर के समय बैठे हैं कोई क्यू नहीं है तब भी आपको बैठने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन उस समय जब सब लोग आ रहे हैं बाहर क्यू लगी हुई है तो ऐसे समय पर 5 और 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठना है। और जब बाबा को पत्र लिखने की बात आती है तो जो पत्र भी लिखेंगे आप तो कुटिया और कमरे में बैठकर नहीं लिखना, ऑलरेडी छोटा स्थान है, और जब हम पत्र लिखने बैठते हैं बाबा के साथ खो जाते हैं रूह रिहान में तो समय का अंदाजा हमें नहीं होता है। नंबर 2, कई बार लिखते लिखते पेन हाथ से कब छूट जाती है खुली पता ही नहीं चलता है, और फिर सफेद बिछायत पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं। और नंबर 3 कि जब लिखने की बात सोचते हैं कॉटेज में कुटिया में या कमरे में बैठकर तो अपनी जेब टटोलते हैं पेन निकालने के लिए, डायरी निकालने के लिए, या पर्स जो भी आपके पास बैग है, फिर उस कॉपी के पन्ने पलटाएंगे खड़खड़ खड़खड़ करते हुए। हाँ, तो दूसरे जो बैठे ही 5-10 मिनट के लिए हैं क्या होता है, उनका अटेंशन थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है ना, तो इसलिए इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए कुटिया के अंदर और कमरे के अंदर बैठकर पत्र नहीं लिखना है। हाँ, हिस्ट्री हॉल में चाहे लिखना है लिखो, टावर ऑफ पीस खुला मैदान है, चाहे जहां बैठकर लिखो, और आपको लगता है नहीं मुझे कहीं स्थान नहीं दिख रहा है तो यहां पर भी आके खाली समय में बैठ के लिखेंगे तो कोई हर्जा नहीं है। तो ये बात ध्यान पे रखेंगे। तो ये हुआ आपका सुबह का समय कि 9 से 10 चार धामों की यात्रा करेंगे और बाबा को पत्र लिखेंगे, और 10 बजे इसी हॉल में आपको पहुंचना है। तो सुबह में 10 से 1 और शाम में 5 से 8, सुबह के 10 से 1 3 घंटे और शाम को 5 से 8 पुनः 3 घंटे आपके इसी हॉल के लिए रहेंगे। तो सुबह के 3 घंटों में हम क्या करेंगे, 10 से 10:30 पहले संगठित योग चलेगा और फिर 10:30 से 11:30 एक क्लास होगी। स्पीकर कौन होगा, टॉपिक क्या होगा वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो प्रतिदिन की दिनचर्या में आपको बताया जाएगा। तो एक क्लास होगी 10:30 से 11:30 और फिर 11:30 बजे ब्रेक होगा कि जहां चाय पानी रिफ्रेशमेंट आदि आप उठेंगे, और फिर 12 से 1 दूसरी क्लास होगी, और चूंकि 12 से एक दूसरी क्लास है, इसलिए जो ब्रेक हमने दिया है 11:30 से 12, उसमें आपको ट्रैफिक कंट्रोल यहीं आकर करना है, तभी जाकर हम अगली क्लास 12 बजे आरंभ कर सकते हैं। तो सुबह के 3 घंटे हमारे कैसे चले जाएंगे, पता चल गया? आधा घंटा योग, आधा घंटा ब्रेक और 1-1 घंटे की 2 क्लासेस। इस तरीके से हमारे सुबह के 3 घंटे यूज हो जाएंगे। उसके बाद हम भोजन करने जाएंगे, भोजन के बाद विश्राम, विश्राम के बाद पुनः तैयार होकर आएंगे, शाम की चाय टोली लेंगे और 4:30 से 5 बजे पुनः 4 धाम की यात्रा के लिए आपको समय दे रहे हैं और 5 बजे इसी हॉल में पहुंचेंगे, जहां 5 से 8 जो कहा यहीं रहना होगा। तो उस 3 घंटे हम क्या करेंगे, 5 से 6 पूरा 1 घंटा संगठित योग के लिए रखा है। सुबह में 1 घंटा 4 धाम की यात्रा और यहां पर आधा घंटा योग है ना, और शाम में आधा घंटा 4 धाम की यात्रा और पूरा 1 घंटा यहां पर योग, 1.5 घंटा, समझ में आ गया ना? तो 5 से 6 संगठित योग करेंगे हम यहां पर और 6 बजे क्लास आरंभ होगी, 6 से 7 क्लास और 7 से 7:30 पुनः योग चलेगा। ये 7:30 तक हुआ, फिर 3 दिन होते और तीनों दिन सेम ऐसा चलेगा, और इन 3 दिनों में 3 और कार्यक्रम होते हैं जो 7:30 बजे शुरू होते हैं। एक दिन होता है सौगात, एक दिन होता है स्पेशल ब्रह्मा भोजन सुखधाम के आंगन में, और एक दिन होती है अनुभव की लेन देन। परंतु इस बार थोड़ा सा परिवर्तन ये हुआ है कि सौगात का कार्यक्रम, जो सौगात देने वाले भाई बहने नीचे से आते हैं, उन्होंने कहा इस बार हम शाम को नहीं दे पाएंगे, इसलिए दोपहर में ही रखा है हमने प्रोग्राम। तो कल वैसे मंगलवार के दिन सौगात होती है 7:30 से, इसीलिए चूंकि कल सौगात नहीं होगी तो 7:30 से 8 हम आधा घंटा और योग कर लेंगे, ठीक है? और फिर अगले दिन माना बुधवार के दिन सौगात दोपहर में रखी है, तो 2 क्लास में से 1 क्लास माइनस हो जाएगी और उस 1 क्लास की जगह पे सौगात हो जाएगी, क्लियर हुआ? और फिर बच्चा गुरुवार का दिन, तो उस दिन 7:30 बजे अनुभव की लेन देन होगी, और कल माना बुधवार के दिन दोपहर में सौगात हो जाएगी और 7:30 बजे ब्रह्मा भोजन स्पेशल होता है सुखधाम के आंगन में। और चूंकि सुखधाम का आंगन बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए सभी वहां इकट्ठे नहीं जा सकते हैं, इसलिए आधी क्लास को हमें 7:30 उठाना ही होता है। तो आधी क्लास जब उठती है तो फिर योग का वातावरण तो नहीं रहता है ना, जो आधी क्लास को कहें बैठे रहो, इसलिए दूसरी आधी क्लास को भी हम उठा जरूर देते हैं, लेकिन उनको 10-15 मिनट रुककर बाद में वहां जाना होता है, और तब तक वो 10-15 मिनट आप अपना बाबा के कमरे में, कुटिया में या रिफ्रेश होने में यूज कर सकते हैं। तो क्लियर हुई 3 दिन की दिनचर्या सभी को? हाँ, तो सुबह में 1.25 घंटा अमृत वेला, फिर 10 से 1 3 घंटा और शाम को 5 से 8, क्लियर? इस प्रकार से 3 दिन हो गए। और फिर आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको नेक्स्ट डे बाप दादा मिलन का भी अवसर मिल रहा है। हमने देखा अभी तक जितनी भी भर्तियां चली है, तो कई ग्रुप्स में बाप दादा मिलन उन 3 दिनों के बीच में कहीं न कहीं आता था, लेकिन आप तो बहुत लकी है कि 3 दिन सेपरेट पूरी भर्ती के लेंगे और फिर अलग से बाबा वाला दिन है आपका। तो जो अलग से बाबा वाला दिन है 5वां शुक्रवार का, जनरली जितने भी ग्रुप आते हैं 5वें दिन तो सुबह मुरली और योग के बाद जाने की तैयारी होती है, तो सुबह मुरली और योग के बाद हम, अगर वो लोग दोपहर में जाते हैं तो हम एक कार्यक्रम रखते हैं उनका नक्की लेक वॉक पर जाने का। और चूंकि आप लोग भी यहीं हैं, तो शुक्रवार के दिन क्या रहेगा, अमृत वेला करके, मुरली आदि करके, नाश्ता करके 9 बजे आप सभी एकत्रित होंगे पांडव भवन का जो पीछे वाला गेट है, वहां सभी एकत्रित होंगे। और सभी जब मैं कह रही हूं मतलब जो चल सकते हैं उतनी दूरी तक पैदल कर सकते हैं, जो समझते हैं कि हम इतना नहीं चल सकते हैं उनके लिए जरूरी नहीं है, तो जो चल सकते हैं वे सभी पांडव भवन के पीछे वाले गेट पर एकत्रित होंगे। वहां पर हमारे एक मधुबन निवासी आपको गाइड करते हुए, वो बाबा के समय का जो पेड़ है जहां से बाबा सबको रुमाल हिलाकर छुट्टी दिया करते थे, वो पेड़ देखते हुए बस 2-3 कदम आगे बढ़ेंगे तो एक रोज गार्डन है, जो है तो म्युनिसिपालिटी का लेकिन हमारे बाबा के बच्चे उसको डेवलप कर रहे हैं। तो अगर आप सभी ब्राह्मण बच्चे वहां कदम रखेंगे, आपके वाइब्रेशन फैलेंगे, तो अवश्य ही वो जल्दी डेवलप हो जाएगा। और वैसे भी उस गार्डन के अंदर एक कुआं है जो बाबा के समय का है, कि जहां से वो पानी लाया जाता था पांडव भवन तक, तो कुआं भले बंद है लेकिन एक नजर, एक झलक आप उसकी वहां देखेंगे। और वो गार्डन में चलते चलते पीछे वाले गेट से एंटर करेंगे और चलते चलते आप आगे जाएंगे तो गार्डन का सामने वाला गेट आ जाता है, और सामने वाले गेट पर पहुंचते ही वो नक्की लेक की तरफ रास्ता जाता है। तो वहीं से आप नक्की लेक जाएंगे, कहां तक, जहां झंडा लगा हुआ है ना, वहां तक आपको लेके जाएंगे, और उसी रास्ते में पहाड़ी चढ़ने का भी हिस्सा आ जाता है। तो जो पहाड़ी जाना चाहेंगे पहाड़ी जा सकते हैं, और जो पहाड़ी नहीं जाना है सिर्फ वहां तक झंडे तक, जिसको राम जानकी पार्क भी कहते हैं, वहां तक जाके वहां पे योग करके और पुनः आप लौट के आ जाएंगे। और उसके बाद तो चूंकि बाप दादा मिलन का दिन है, हाँ, वो जो राम जानकी पार्क जिसको कहते हैं वो दादी ने खुद इनॉग्रेट किया था। और एक तो रास्ते में फाउंटेन भी आता है, शायद वो उस समय चालू नहीं रहता है ना, वो फाउंटेन का भी उद्घाटन दादी जानकी ने किया था, लेकिन उस समय शायद न भी चालू हो। तो हम क्या बता रहे थे, तो वो करके जब आप आएंगे तब तक तो 11 बज चुके होंगे वापस आएंगे तो, और थोड़े चल के आएंगे थोड़े थके भी होंगे, तो आपको कोई क्लासेस आदि नहीं रखेंगे उस समय, फिर तो भोजन करके समय पे विश्राम कर लेना। और शाम को जो बाबा का प्रोग्राम है वो ओम शांति भवन में होगा। और जैसे कि हम सभी जानते हैं शांतिवन से ही हम लाइव ट्रांसमिशन देखेंगे, तो हम सबको पता है 5 बजे शुरू होता है, तो 4:45 बजे तक सभी ओम शांति भवन में अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और योग करेंगे। और जैसे ही 5 बजेंगे लाइव ट्रांसमिशन चालू हो जाएगा, सूर्य भाई की क्लास मिलेंगी 5 से 6, और 6 से 6:30 संगठित योग भी चलेगा और बाबा को भोग भी लगेगा, और 6:30 बजे तो बाप दादा की वीडियो रिवाइज वाली आरंभ हो जाती है जो 8 बजे तक चलती है। और उसके बाद दादियों के वरिष्ठों के गुड विशेष होती है, और उसके बाद टोली लेकर वो कार्यक्रम पूरा हो जाता है और हम सब भोजन के लिए जाएंगे। और फिर अगले दिन फिर क्या करेंगे, अमृत वेला और मुरली करके जाने की तैयारी करेंगे। तो ठीक हुआ, क्लियर हुआ पूरा, आपकी दिनचर्या यहाँ पर कैसी रहेगी। प्रतिदिन की हम प्रतिदिन अनाउंस करेंगे, क्योंकि अभी बताएंगे भी तो याद रहने वाला नहीं है। और दूसरी बात, ब्राह्मणों के प्रोग्राम तो पल पल चेंज होते हाँ, आज एक स्पीकर डिसाइड किया वो बोलेगा मैं नहीं आ रहा हूँ, दूसरा आएगा, इसलिए वो सब हम पहले से नहीं बताते हैं। और हर दिन के लिए एक समान भी होगा, तो आज चूंकि पहला दिन है, खास तपस्या का लक्ष्य है, तो मैं तपस्वी मूरत आत्मा हूं, ये आज का हमारा समान है। हर दिन अलग अलग समान होगा, और उस समान का स्पष्टीकरण हमें मालूम होना चाहिए, इसलिए जो क्लासेस रखी जाती है दिन भर में, कोई न कोई एक क्लास उसी समान के विषय पर रहेगी, तो समान का आपको स्पष्टीकरण भी मिल जाएगा। आज तो तपस्या का समान है, तो अभी जो हमने कहा दिनचर्या के साथ साथ कुछ डायरेक्शंस भी देंगे, तभी जाके हमारी भट्टी सफल होगी। तो इस डायरेक्शन के समय तपस्या क्या है आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है डायरेक्शंस विशेष कि ये जो दिनचर्या बनाई गई है आपके लिए, एक तो इसका पूरा पूरा फॉलो करना है, जिस प्रकार से बनी है उसी प्रकार से आपको चलना है, लेकिन उसके बाद भी और क्या अटेंशन रखना है तब जाकर इसके भट्टी का लाभ होगा, वो है तीन प्रकार के मौन धारण करने होंगे। कौन से हैं वो तीन प्रकार के मौन? तो पहला है मुख का मौन। मुख का मौन माना बोलना नहीं है, आवाज में नहीं आना है। हाँ, हम समझ सकते हैं 24 घंटा इसको लॉक नहीं रख सकते हैं, कहीं तो आवश्यक कामों के लिए बोलना पड़ेगा। विशेषकर टीचर बहनों को जिनको जिम्मेवारी है उनको तो बोलना पड़ता है, लेकिन बाकी सब जिनको कोई जिम्मेवारी नहीं है सिवाय भजन और भोजन के, वो सब पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे मुख का मौन का। टीचर बहने भी रखेगी, लेकिन जो जिम्मेवारी है उसको तो उन्हें निभाना ही होगा। तो मुख का मौन इसलिए कहा कि 24 घंटे भल हम ना भी रख सके इसको बंद, लेकिन क्या करेंगे, धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो। यहां तीनों चारों दिन जो आप यहां भट्टी करने आए हैं, आपकी हर एक्टिविटी, आपकी हर गतिविधि, चाहे फिर वो उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, चलना है, फिरना है, बोलना चालना, जो भी है, फरिश्ते अंदाज में हो। बाबा कहते हैं ना, कोई पूछे आपसे क्या हाल चाल है तो क्या जवाब देंगे, हाल तो खुशहाल है और चाल तो फरिश्तों की है। तो तीन चार दिन जैसे कहा कि बाप बच्चों के आने से बाप का घर डेकोरेट हो जाता है, श्रृंगारित हो जाता है, तो इस बाप के घर में पूरे परिसर में आप ऐसे रहेंगे जो यहाँ रहने वालों को बिल्कुल ये आभास हो ये बाबा के फरिश्ते हैं। ऐसी आपकी रिमार्क आनी चाहिए कि ये बाबा के उड़ते हुए फरिश्ते हैं, श्वेत वस्त्रधारी, शांत, शीतल, खुशनुमा फरिश्ते। तो ये आपकी रिमार्क होनी चाहिए। तो मुख का मौन समझ में आ गया। और दूसरा मौन है मन का मौन। क्या होता है मन का मौन, किसको कहते हैं मन का मौन? क्योंकि कई बार लोग कहते हैं न मुख से बोलना है न मन से बोलना है, चुप 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 भारी नहीं हो जाएंगे क्या हम? हाँ, क्योंकि मन का मौन क्या है वो अभी क्लियर हमको पता ही नहीं है, तब जाके हम ऐसा कहते हैं कि भारी नहीं हो जाएंगे क्या। मन का मौन क्या होता है, देखो मैं यहाँ बैठी हूँ, समझो ये मैं अपने घर में, मेरी ये सीट है, यहाँ पर बैठी हूँ, और ये मेरे घर का कॉरिडर है, दहलीज है, दरवाजा है, गैलरी है, बालकनी है, चाहे जो भी कह दो, ठीक है। और इस दरवाजे के उस पार बाहर की दुनिया है। घर में याद करो बच्चों को, या हम जब खुद बच्चे थे या आज भी कई बार कुछ खाली समय तो क्या करते हैं, दरवाजे पे जाके खड़े हो जाना, गैलरी पर जाके खड़े हो जाना, बालकनी में जाकर खड़े हो जाना, और बाहर जो रमत गमत चल रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनके साथ बातें कर रहे हैं, यही करते हैं। अब समझो बच्चा बाहर ही लगा हुआ है, खड़ा बालकनी में, घर पे ही है, घर की बालकनी में खड़ा होकर बाहर वालों को देख रहा है, बाहर वालों से बात कर रहा है, बाहर वालों की बातें सुन रहा है। इधर घर में मम्मी पापा अगर बैठे हैं, वो बच्चे को आवाज दे रहे हैं, सुनाई देगी उसको? देगी सुनाई उसको? नहीं। वो मम्मी पापा को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। कब सुनाई देगी उसको आवाज? कब वो देख पाएगा मम्मी पापा को? कब वो उनके साथ बातचीत कर पाएगा? जब उसका मुख जो बाहर की तरफ है उसमें यू टर्न लेगा वो, है ना? यू टर्न लेना पड़ेगा ना उसको। ऐसे देख रहा है मतलब जो पीठ घर को है, घर के सदस्यों को पीठ है और बाहर वालों के साथ वो बात कर रहा है, सुन रहा है, देख रहा है। और इसलिए अंदर वाले अगर उसे बात करना चाहे भी, कर भी रहे हो, आवाज दे भी रहे हो, नहीं सुनाई देगा उसको। और फिर बाद में जब वो बालकनी से अंदर जाता है, मम्मी कहती, बेटा कब से आवाज दे रही हूं? अरे मेरे को तो कुछ भी नहीं सुनाई दिया, कैसे सुनाई देगा? बाहर की आवाज में तो लगे पड़े थे, है ना? तो मन का मौन मतलब क्या? ये तो बच्चे का एग्जाम्पल था कि बच्चा गैलरी में खड़ा हो जाता है। ये हमारे मन बुद्धि भी इंद्रिय रूपी दरवाजे और गैलरी में और खिड़की में आके खड़े हो जाते हैं और बाहर देखते हैं, बाहर का सुनते हैं, बाहर वालों से बोलते हैं, बाहर की गंध का अनुभव करते हैं, सब बाहर बाहर। मन बुद्धि इस गलियारे में खड़े होके आ जाता है, इंद्रियों रूपी गलियारों में, दरवाजों में, खिड़कियों में खड़ा होके बाहर झांकते रहता है। लेकिन मन का मौन करना मतलब ये जो मन बुद्धि है इनसे कहना, अभी यू टर्न ले लो। यू टर्न लेके अंदर, कहते ना शरीर क्या है? घर है। घर में आखिर सीट होती है ना बैठने की, तो शरीर घर है। इस घर के अंदर आत्मा इस भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठी है। तो मन बुद्धि जो बाहर की दुनिया में झांक रहे हैं, वहां से यू टर्न ले और किसके आमने सामने हो जाए? आत्मा रानी के आमने सामने हो जाए। आत्म दर्शन करें, अंतरात्मा की आवाज सुने। कहते हैं ना अंतरात्मा आवाज देती है, परंतु वो सुनाई नहीं पड़ता है। क्यों नहीं सुनाई पड़ता है? अभी जैसे आपकी फोन है आपके पास, उसकी जो भी वॉल्यूम आपने सेट करके रखी है और यहां पर उस फोन को यूज कर रहे हैं, तो आपको सामने वाले की आवाज सुनाई देती है उस वॉल्यूम पर। लेकिन उसी वॉल्यूम पर एक भीड़ भड़ाके वाले स्थान पे चले जाइए, आपको सामने वाले की आवाज उस समय सुनाई देती है? क्या कहते हैं, मुझे आपका कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जबकि वही वॉल्यूम है जो यहां पे सुनाई दे रही थी। पर क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? क्योंकि बाहर की आवाज बहुत है और इसलिए वो आवाज जो धीमी है वो सुनाई, भले धीमी भी नहीं उतनी, पर बाहर की बहुत जबरदस्त तेज है। बाहर चारों तरफ कोलाहल है तो उसमें वो आवाज क्या हो जाती है? दब जाती है। इसीलिए योग तपस्या का समय मिलता है कि जहां आप मौन में रहो, का मतलब है बाहर से यू टर्न लेके अंदर आ जाओ, आत्म दर्शन करो, अंतरात्मा की आवाज सुनो। ये जो हमें ज्ञान मिला हुआ है कि मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, प्रैक्टिकल में मैं हूं क्या? अपनी चेकिंग करो। जो हम दिन भर की प्रवृत्ति में लगे रहते हैं, मेरा सचमुच प्रेम स्वरूप बाहर आता है या नफरत वाला आ जाता है? शांत स्वरूप वाला स्वरूप बाहर आता है या गुस्से वाला बाहर आ जाता है? वो अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी है बैठ के कि मुझे ज्ञान तो ये मिला है। मैं तोताराम की तरह बोलता भी हूं अपने आप को कि मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, लेकिन क्या सचमुच जब मैं कर्म क्षेत्र में होता हूं वो ज्ञान स्वरूप, वो प्रेम स्वरूप, वो शांत स्वरूप वाइब्रेट होता है मेरे से, वो वाइब्रेशन निकलते हैं, वो सेल्फ चेकिंग, इसको कहते हैं मन का मौन, इसको कहते हैं अंतर्मुखी हो जाना। अभी तक क्या थे, इंद्रियों के गलियारे में आकर बाहर, बाहर मुखी, अभी यू टर्न लेके अंतर्मुखी हो जाएंगे। तो इन 3-4 दिनों में आपको जो क्लासेस मिलेगी वो कुछ भी नया नहीं होगा। क्यों नया नहीं होगा? क्योंकि बाबा को जो पढ़ाना था पढ़ा लिया, अभी तो सिर्फ रिवीजन चल रही है ना। तो और अभी कोरोना काल में ऑनलाइन सेवाएं शुरू हुई तो बहुत कुछ मिल गया सुनने के लिए। तो अब ज्ञान के भंडारे तो हमारे भरपूर है, अभी जरूरत है स्वयं की चेकिंग करने की कि वो ज्ञान जो बुद्धि में भरा है वो प्रैक्टिकल में है क्या। तो यहां पर हर क्लास क्या होगी, जो सुना हुआ है उसी में से कोई एक टॉपिक लिया जाएगा, वही बातें होगी जो आपने सुनी हुई होगी। फर्क इतना होगा कि शायद इस बात का स्पष्टीकरण मुझे इस तरीके से पहले नहीं पता था, बस इतना अंतर होगा। और क्या अंतर होगा कि मैंने ये सब सुना हुआ तो था, बस सुन के रख लिया था, लेकिन चेकिंग नहीं की थी कि सचमुच ये मेरे जीवन में है या नहीं। और कभी प्रॉमिस जब चेकिंग ही नहीं की तो चेंज का सवाल ही नहीं उठ रहा है। तो अभी क्या करना है, एक एक क्लास किस लिए मिलेगी, रिवीजन होगी। वो ये पता सब है लेकिन अभी मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूं कि मैं अपने आप को चेक करूं और चेक के आधार से फिर चेंज भी कर सकूं। और उसके लिए तो एकांत की आवश्यकता होती है, इसीलिए तो भट्टी है कि आपको कोई जिम्मेवारी नहीं, आपको और कुछ नहीं सोचना है, बस अपना इंट्रोस्पेक्शन, अपनी आंतरिक जांच, और उस जांच के दौरान ज्ञान के आधार से क्या मेरे जीवन में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए वो है उसको बाबा को सौंप दो, बाबा ये नहीं होना चाहिए पर है मेरे पास अभी भी और ये मैं आपको स्वाहा करती हूं, और जो होना चाहिए वो नहीं है वो बाबा को लिखो, बाबा मैं प्रॉमिस करता हूं अब से मैं अपने जीवन में लाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। बाबा कहते ना, एक कदम हिम्मत का उठाओ तो बाबा हजार कदम मदद देने के लिए तैयार है। तो अब बताओ, ये जब मन का मौन होगा तो इसमें बोरियत होगी क्या, हाँ भारीपन कहाँ से आएगा, बल्कि जो नहीं होना चाहिए वो बाबा को स्वाहा करते जाएंगे तो हल्के होते जाएंगे ना, और ही, और जो होना चाहिए उसके प्रति बाबा से प्रॉमिस करेंगे तो बाप खुश होगा तो उसकी भी तो खुशी होगी ना। तो इसलिए मन के मौन को बहुत अच्छी से यहाँ पे अटेंशन देना है। और तीसरा मौन है मोबाइल का मौन। तो मोबाइल को स्विच ऑफ रखेंगे, वाइब्रेटिंग मोड पर भी नहीं रखेंगे, कंप्लीट म्यूट या फिर कंप्लीट स्विच ऑफ। जब तक आप मेडिटेशन हॉल में हो आपकी मोबाइल बजनी नहीं चाहिए, जब आप चार धामों में हो आपकी मोबाइल नहीं बजनी चाहिए, जब आप ओम शांति भवन में हो आपकी मोबाइल नहीं बजनी चाहिए, ठीक है। तो स्विच ऑफ करेंगे, जिन माताओं को, भोली भोली माताओं के हाथ में बच्चे दे तो देते हैं लेकिन ऑपरेट करना नहीं आता है, हाँ तो जो माताएं से समझती हमें नहीं आता है तो जो समझदार है उनसे म्यूट करवा लेना या तो फिर स्विच ऑफ करा देना, ठीक है।